त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणनः किरणं, विमलयरणेमिचन्दं तिहुवनचन्दं नमन्सामि। ये आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका को हम पढ़ रहे हैं और अभी आए हैं। हाँ, ये विशुद्धमती माता जी की हिंदी है क्योंकि टोडरमल जी की तो ढूंढारी भाषा में है त्रिलोकसार और ये हिंदी है। 73 पृष्ठ पर हम आए हैं, 73। हमने द्विरूप वर्ग धारा देखी थी, यानी 14 धाराओं में से पहले तो 11 देखी है, 3 धारा है वो वर्गरूप धाराएं हैं। द्विरूप वर्ग धारा में 2 का वर्ग 4 से वो धारा चालू होती है। द्विरूप घन धारा की भी बात चल रही थी, घन धारा में 2 का घन 8 है, वो धारा का भले पहला स्थान कहलाएगा, उसके आगे उसका वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग आगे कहीं घन नहीं करना है, परंतु वर्गों के स्थान देखेंगे यानी वर्गशाला का देखेंगे तो 64 ये पहले वर्गशाला का है, उसकी वर्गशाला का 1 है, उसके वर्ग की 2, उसके वर्ग की 3, इस तरह से। अच्छा, आप कल नहीं थे ना, यह हमने ये बात कल पढ़ी थी 80 नंबर के गाथा में, कल पेज नंबर 72 पर, के द्विरूप वर्ग धारा में जिस स्थान पर यानी जिस वर्ग स्थान पर यानी उसकी जो वर्गशाला का होगी जो जो राशि उत्पन्न होती है द्विरूप घन धारा में उसी उसी स्थान पर उसी की घनरूप राशि की उत्पत्ति होती है। वर्ग धारा द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान है 4, द्विरूप घन धारा में वो वर्ग स्थान जो है वो है 64, तो वो उसका घन है। द्विरूप वर्ग धारा में दूसरा स्थान है 16 और घन धारा में दूसरा स्थान है 4096, वो उसका घन है, इस तरह से लेना है हमको। अब हम यहाँ 81 नंबर को पढ़ने जा रहे हैं।
हाँ,
देखो द्विरूप वर्ग धारा में क्या क्या हमने देखी थी, कुछ संख्या देखी, जघन्य परिता संख्या देखा था, उसका घन इसमें आएगा, वहाँ आवली देखी थी, यहाँ आवली का घन आएगा, वहाँ प्रतरावली देखी थी यानी जिसको हम जघन्य असंख्याता संख्यात कहते हैं, उसका घन इसमें आता है यानी आवली के वर्ग का घन इसमें आता है। आगे चलकर हमने देखा पल्य आता है वहां पर या उनकी वर्गशाला का अर्धच्छेद सब आते हैं, उसको हम गौण करेंगे, उस राशि में पल्ले है तो इस राशि में पल्ले का घन आएगा, उस राशि में अंगुल आता है तो यहाँ आएगा घनांगुल, इस तरह से हमको देखना है। मेरे वहां जो जो संख्याएं थी उसके घनरूप राशि इस घनधारा में होती है। अब 73 पर आते हैं हम, यानी वो सारे स्थान देखे थे, वहां जीव राशि थी तो इसका जीव राशि का घन होगा, वहां पुद्गल थी तो यहाँ पुद्गल था तो यहाँ पुद्गल का, वहां आकाश की श्रेणी थी, यहाँ आकाश पूरा आकाश का यानी घन स्वरूप आकाश के प्रदेश, इस तरह से जो जो वहां स्थान देखे थे ना उसके घन इसमें आ जाएंगे। हाँ, परंतु वहां जो अंतिम स्थान है यानी केवल ज्ञान का घन नहीं कर सकते, उसके वर्गमूल का घन नहीं कर सकते, तो उसके पहले के स्थान ले लेना, तो किसने स्थान आता है क्या, वो तो बाद में बातें होगी। अब यहाँ गाथा पढ़ते हैं हम, सॉरी पहले गाथा पढ़ते हैं। हाँ 81 नंबर की। एवं अनंतम ठाणम निरंतरम गमीय केवल सेव विदीय पद बिंदमंतम विदियादि ममूल गुणिद समम एवं अनंतम स्थानम निरंतरम गत्वा केवलस्यैव द्वितीय पद वृंदमंतो द्वितीयादि ममूल गुणित समः। क्या क्या द्वितीय पद वृंदमंतो, अंतिम स्थान कौन सा है? द्वितीय वर्गमूल का घन, क्योंकि प्रथम वर्गमूल का घन निकालने जाए तो केवल ज्ञान से ज्यादा हो जाएगा। जैसे पनट्ठी का प्रथम वर्गमूल है 256, 256 का वर्ग पनट्ठी, उसका घन तो और आगे चला जाएगा तो उसका नहीं हो सकता। पनट्ठी का द्वितीय वर्गमूल है 16, तो उसका घन तो आ सकता है, समझ में ना? हाँ। तो यहाँ कहते गाथार्थ हम देखेंगे। इस प्रकार निरंतर अनंत स्थान आगे जाकर, हमने तो घन रूप आकाश के प्रदेशों तक देखा था, उसके आगे अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन उत्पन्न होता है, यही द्विरूप घनधारा का अंतिम स्थान है। यह द्वितीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि के बराबर है। प्रथम वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान आता है, यानी प्रथम वर्गमूल गुणा प्रथम वर्गमूल इज इक्वल टू केवल ज्ञान। पर प्रथम वर्गमूल को हम प्रथम वर्गमूल से नहीं गुणा करते, उसके रूट से। वो तो छोटी राशि है, यानी वो द्वितीय वर्गमूल का घन आ जाएगा। फिर से आसन्न घन नहीं, ये तो सारी वर्ग रूप राशियां हैं। ये प्रथम वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल का घन है ये,
तो प्रथम वर्गमूल द्वितीय।
यानी यहाँ बात है कि ये द्विरूप घनधारा में कौन सी बात है, ये केवल घन रूप संख्या तो और भी अन्य हो सकती है। ये अंतिम स्थान है केवल ज्ञान, उसका प्रथम वर्गमूल है केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, उसके और आगे चलेंगे तो केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल, पूर्व में पूर्व पूर्व स्थान पर गुजराती हो गया। अगर अब हम पनट्ठी देखेंगे, उसके पूर्व स्थान है 256, उसका पूर्व स्थान है 16। अब इसमें देखें, ये तो समझ में आती है ना, ये द्विरूप वर्गधारा है हमारी 4, 16, 256 पनट्ठी। अभी हमको देखना है पनट्ठी हमारे द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान है, हम मान लेते हैं द्विरूप वर्गधारा में अंतिम स्थान है, तो द्विरूप घनधारा में अंतिम स्थान कौन सा होगा? तो हम यहाँ 64 से शुरू करते हैं, उसका वर्ग 4096, और उसका वर्ग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4096 का वर्ग, हाँ इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पनट्ठी से ज्यादा हो जाएगा। हाँ यानी 16777 ये 256 का घन होगा, ये 256 का घन होगा। हाँ हाँ वही 256 का घन होता है, यानी वो पनट्ठी मल्टीप्लाइड बाय 256 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 256 होगा। हमें वो नहीं चले, हमें तो 256 को 16 से गुणा करेंगे, इतना हो सकता है इसके अंदर। हाँ तो वही संख्या है 16 का घन, 16 गुना 16 गुना 16। देखो हम क्या कह रहे हैं, प्रथम वर्गमूल गुना द्वितीय वर्गमूल क्यों कहा, हमें 16 गुना 16 गुना 16 इतना ही हो सकता है उसके अंदर, उसके उससे बड़ी नहीं संख्या। तो 16 गुना 16 256 हुआ मल्टीप्लाइड बाय 16, उसका अर्थ प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय द्वितीय वर्गमूल, ये है द्वितीय वर्गमूल का घन। तो इसका उत्तर, हाँ वो हमने उस दिन निकाला था ना 1696, अरे 16 का घन है ना 4096, 4096, यानी यहाँ की संख्या द्विरूप घनधारा में अंतिम स्थान है 4096। हमने चार ही स्थान देखे थे और द्विरूप वर्गधारा में अंतिम स्थान था 85, तो उसके दो स्थान इसमें कम हो गए। ये कहना चाहते इस धारा में जितने स्थान है उससे दो स्थान इसमें कम हो गए, वर्गशाला का इसमें दो कम होगी। ख्याल में आई ना बात? यहाँ द्विरूप वर्गधारा में 85 तक चार वर्गशालाएं थी, अब इसे 4096 की वर्गशाला का दो है, क्योंकि इसके द्वितीय वर्गमूल का घन है ये। इसको आसन्न घन नहीं कह सकते, आसन्न घन तो हमने 85 का आधा निकाला था 32,000 और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला है, यानी घनमूल निकाला था वो 40 आया था, नहीं 32 आया था कुछ, और 32 से फिर अंतिम घन मूल कौन सा था तो 40 था, तो 40 गुना 40 गुना 40 6400 हमारा वहां चला गया था अंतिम घन, 64,000, क्योंकि 40 गुना 40 गुना 40 करना था, यानी आसन्न घन कौन सा है तो 64,000। पनट्ठी में आसन्न घन कौन सा निकाला था घनधारा में अंतिम घन रूप स्थान 64,000 निकाला था, परंतु यहाँ हमारा क्या निकालना है, यहाँ द्विरूप घनधारा का अंतिम स्थान कौन सा है वो निकालना है। आगे घन संख्या नहीं वो बात नहीं, हमारे इस धारा में वो नहीं आएगी संख्या है। चल में है ना बात? हाँ इसमें तो दो कम ही रहेंगे, क्योंकि द्वितीय वर्गमूल का घन हो सकता है, उसके आगे का घन नहीं हो सकता। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम, देखो यहाँ फिर पढ़ते गाथार। इस प्रकार निरंतर अनंत स्थान आगे जाकर, यानी एक एक स्थान जाते हुए निरंतर कर, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन उत्पन्न होता है, यही द्विरूप घनधारा का अंतिम स्थान है। इसका अर्थ समझ में आई ना? यह द्वितीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि के बराबर है। द्वितीय वर्गमूल का घन निकालना है तो द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल, द्वितीय गुणा द्वितीय वर्गमूल, दो बार द्वितीय वर्गमूल आया तो उसका अर्थ होता है प्रथम वर्गमूल, और वो द्वितीय वर्गमूल ऐसे ही रखना वापस। विशेषार्थ, सर्वाकाश राशि के आगे निरंतर अनंत स्थान आगे जाकर, अनंत स्थान जाने के लिए वो वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग करना है, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन उत्पन्न होता है, यह द्विरूप घनधारा का अंतिम स्थान है। वह केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि के सदृश है, यथा केवल ज्ञान स्वरूप 65,536, ये जो हमने मान लिया था, उसके द्वितीय वर्गमूल 16 का घन 4096 है, और 65,536 के प्रथम वर्गमूल 256 में द्वितीय वर्गमूल 16 का गुणा करने से भी 4096 की प्राप्ति होती है। अर्थात केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन इज इक्वल टू केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल। ये तो ख्याल में आई यहाँ पर? अब यहाँ 82 नंबर को हम पढ़ेंगे गाथा को। एतदेव अंतस्थानम कथमिति आशंकायाम आह। यहाँ पूछेंगे केवल ज्ञान का यही अंतिम स्थान कैसे है, नहीं इस धारा में यही अंतिम स्थान क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया। उसको अभी हम गाथा में पढ़ेंगे। चरिमस्स दुचरिमस्सय नैव गणम केवलौवदिक्कमदो तम्मा विरूवहीना सगवगसलाहवेठाणम चरमस्य द्विचरमस्य च नैव गणः केवलव्यतिक्रमतः तस्माद्विरूपहीना स्वकवर्गशला भवेत् स्थानम्। गाथार्थ नीचे द्विरूप वर्गधारा की, वर्गधारा की बात चल रही। चरम और द्विचरम राशि का घन, चरम राशि ने केवल ज्ञान राशि, अभी वही अंतिम है तो उसका घन कैसे नहीं होगा। द्विचरम है ने लास्ट बट वन उपांत सेकंड लास्ट, तो कहते उसका भी घन तो वो भी अधिक हो जाएगा केवल ज्ञान से। इस धारा का अंतिम स्थान नहीं है ये कहना चाहते। द्विरूप वर्ग धारा में अंतिम स्थान है केवल ज्ञान, उपांत या द्विचरम स्थान है केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, उन दोनों का भी घन नहीं हो सकता कारण कि इनका घन तो केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाएगा। केवल व्यतिक्रमतः लिखा ना ऊपर, उसका व्यतिक्रम हो जाएगा यानी उसका उल्लंघन कर जाएगा। इस धारा के समस्त स्थान दो कम केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण है। केवल ज्ञान की वर्गशाला का है यानी द्विरूप वर्ग धारा में उसका स्थान किस पॉइंट पर है, कौन से नंबर पर है, उसको कहेंगे उसकी वर्गशाला का है कितनी। द्विरूप घन धारा में वो द्वितीय वर्गमूल का घन हो सकता है यानी उसमें दो स्थान कम है, इसलिए कहा दो कम केवल ज्ञान की वर्गशाला का। समझ में आती ना, ये तो आसान है सरल।
हाँ
तो इसका आठ होगा, अंतिम स्थान आठवें स्थान पर होगा। जैसे हमने देखा ना पनट्टी है, वहाँ द्विरूप वर्ग धारा में पनट्टी है चौथे स्थान पर, और ये अंतिम स्थान जो 4096 है वो दूसरे स्थान पर, दो कम हो जाएंगे। हाँ कम है इसमें। हाँ ऐसा नहीं कहना, ये हमारी 4096 संख्या है, ये द्विरूप इसका वर्ग करने जाओ तो ये पनट्टी से ज्यादा हो जाएगा। हाँ इसलिए ये इसमें इस धारा का ये अंतिम स्थान है, अभी इससे आगे कोई स्थान नहीं है। ये घन धारा है वर्ग धारा, वो तो केवल ज्ञान है। वर्ग धारा का अंतिम स्थान तो केवल ज्ञान है, उसकी तो बात नहीं है। हाँ फिर से
वर्ग धारा की चरम और द्विचरम राशि।
हाँ द्वि वर्ग धारा की
धारा का अंतिम स्थान
नहीं है।
तो आप क्या कह रहे हैं लास्ट इस धारा के समस्त स्थान दो कम, समस्त स्थान यानी कौन से,
वन टू
दो कम केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण है। वर्गशाला का अगर हम 10 मानते हैं तो समस्त स्थान
यानी इसमें आठ ही स्थान हो गए, इसके अंतिम स्थान की वर्गशाला का आठ होगी। अब पनट्टी पर घटित करो ना, पनट्टी की वर्गशाला का चार है, यहाँ का अंतिम स्थान 4096 है, उसकी वर्गशाला का दो ही है, चार माइनस दो दो आ गए यहाँ पर। हाँ शाला का के यानी वर्ग स्थान, यदि आठ को पहला वर्ग धारा के स्थान अगर है वो अलग है, आठ को अगर इंक्लूड करते तो वो बात अलग है, यहाँ वर्ग स्थानों की बात चल रही है। इनके स्थान क्योंकि उसका स्थान गिनेंगे हम वर्ग रूप स्थान से स्थान गिनेंगे। देखो हम 74 पृष्ठ पर आते हैं। विशेषांक द्विरूप वर्ग धारा की चरम राशि यानी अंतिम स्थान केवल ज्ञान है और द्विचरम राशि केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल है। इन दोनों राशियों के घन को ग्रहण कर इस धारा का अंतिम स्थान, इस धारा का यानी द्विरूप घन धारा का वो अंतिम स्थान नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो तो केवल ज्ञान का उल्लंघन करेगा, इसलिए नहीं। अर्थात इन दोनों को यहाँ ग्रहण नहीं किया है, कारण कि इनके घन को ग्रहण करने से केवल ज्ञान से अधिक प्रमाण वाली राशि की प्राप्ति होने का प्रसंग प्राप्त होता है, पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, ऐसी कोई होती नहीं है। जैसे केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 का घन और 65,536 के प्रथम वर्गमूल 256 का घन, ये दोनों राशियां केवल ज्ञान के प्रमाण को उल्लंघन करने वाली है। आप कहेंगे 256 का घन करो ना, तो 256 का घन है 65 × 256, तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल का घन करो तो केवल ज्ञान गुना उसका प्रथम वर्गमूल हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए ये दो राशि को हम यहाँ द्विरूप घन धारा में नहीं काउंट करेंगे, उससे पूर्व स्थान वाली को ले लेंगे। अतः द्विरूप घन धारा में इनका ग्रहण न करके केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन ग्रहण किया है। 4096 द्वितीय वर्गमूल 16 का घन। जैसे केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 का द्वितीय वर्गमूल 16 है और इसका घन 4096 है जो केवल ज्ञान के भीतर है, यही इस धारा का अंतिम स्थान है। जब हमने घन धारा देखी थी ना, तो उसमें कोई भी घन संख्या होती है। यहाँ कंडीशन क्या है, वो इस धारा में होनी चाहिए, द्विरूप घन धारा में वो होनी चाहिए। और ये सारे वर्ग 8 से शुरू करके वर्ग के वर्ग के वर्ग के स्थान है, इसलिए ये अंतिम स्थान 4096 है। और वो आसन्न घन तो हमने बहुत बड़ा देखा था, यानी 65,536 के लिए आसन्न घन तो 64,000 को देखा था हमने, यानी नियरेस्ट घन, लास्ट घन 65,536 के, वो तो वर्ग रूप राशि थी। अंतिम घन राशि कौन सी थी, ऐसा वहां घन धारा में वो बात पूछी थी। तो 40 का घन 64,000 है, वो वहां अंतिम स्थान था, वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि 16 का घन ही इस धारा में आ सकता है। या तो 4 का घन 64 आएगा या 16 का घन 4096 आएगा, इस तरह से। इस द्विरूप घन धारा के समस्त स्थान, टोटल नंबर ऑफ स्थान 2 केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण है। इसका अर्थ है द्विरूप वर्ग धारा में जितने स्थान है, कितने हैं, तो केवल ज्ञान के वर्गशाला का प्रमाण है। और इस द्विरूप घन धारा में कितने हो गए, उसके वर्ग काउंट करो तो 2 हो गए इसके अंदर। इस धारा का आदि स्थान 8 और अंत स्थान केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन है, तथा विरूप वर्ग धारा के सभी मध्यम स्थान घन स्वरूप होकर इस धारा के मध्यम स्थान बन जाते हैं। अभी इसमें आदि स्थान जो लिखा ना ऊपर, क्या बताया उन्होंने, 2 केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण बताया। अभी 8 को अगर काउंट करेंगे तो वो एक स्थान बढ़ जाएगा, यानी ये कंफ्यूजन इनका वहां पर भी बना है। हाँ, ये धारा का स्थान है पर वो वर्ग स्थान नहीं है। धारा में भले आप उसको लिखो परंतु वो वर्ग रूप संख्या नहीं है। आदि नहीं, आदि स्थान तो 64 हो जाएगा। हाँ, आदि वर्ग स्थान 64।
हाँ,
देखो इस धारा का आदि वर्ग स्थान, वर्ग एक बीच में शब्द डालो, फिर आठ के बदले 64, और अंतस्थान केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन है। पीछे पीछे 74, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, आप लिख रहे हैं। हाँ 71 74। अरे वो कंफ्यूजन उन्होंने क्लियर नहीं किया है। चलो अभी असंख्यात लोक मात्र आगे पढ़ते हैं। अभी 83 नंबर को पढ़ेंगे। इदानीम द्विरूप घना घन धाराम गाथा अष्टकेन आह। अब इसे आगे द्विरूप घना घन धारा को आठ गाथाओं के द्वारा बताएंगे। आठ गाथाओं द्वारा द्विरूप घना घन धारा का निरूपण करते हैं। तम जान कहते, उसको जानो। 83-84 एक साथ पढ़ेंगे। तम जान विरूप गयम घनाघनम अठ बिंद तौ वग्गम लोगो गुणगार सला वग्ग सलद्धच्छदादि पदम ते उक्काय जीवा वग्ग सलागत्तयम च कायठिरि वग्ग सलादित्तिदयम ओहिणी बद्धम वरम खेतम तम जानीहि द्विरूपगतम घनाघनम अष्टवृंद तद्वर्गम लोको गुणकार शला वर्ग शलार्धच्छेदादिपदम तेजस्कायिक जीवा वर्ग शलाकात्रयम च कायस्थिति वर्ग शलादि त्रितयम अवधि निबद्धम वरम क्षेत्रम। यानी इस धारा के कुछ संख्याएं बताई उन्होंने। यहाँ ये सारी बीच में संदृष्टियां बताई है। हम जो असंख्यात की साइन करते हैं ना, यहाँ वो इंग्लिश जी जैसा उन्होंने संदृष्टि बनाई है। देखो ना, हाँ लोक असंख्यात लोक। देय विरलन कहाँ दिखा दे? वी असंख्यात लोग, दे असंख्यात लोग, यानी विरलन और दे। पहले ऊपर है ना शयन शाला का राशि, विरलन राशि, दे राशि, लोक प्रमाण चालू किया था। हाँ देखो अभी हम हिंदी पर आते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ आते हैं पेज नंबर 76। हाँ ऊपर, यानी वो संस्कृत और वो लाइन के ऊपर। हाँ गाथार्थ हाँ पढ़े। हाँ हाँ गाथार्थ द्विरूप वर्ग धारा में जो जो राशि वर्ग रूप है उस प्रत्येक राशि का घनाघन यानी घन का घन इस धारा में प्राप्त होता है। इस धारा का प्रथम स्थान आठ का घन, आठ का घन कहाँ है? अच्छा आठ का घन प्रथम स्थान को, और द्वितीय स्थान आठ के घन का वर्ग जानो। आदि अष्टघन 512 तदुपरी अष्टघन वर्ग 262,144। जैसे धारा के पहले स्थान पर हमने भी उसको स्वीकार किया था, वर्ग स्थान काउंट करेंगे वर्गशाला का तो अलग होगी। वर्गशाला का 512 को वर्गशाला का नहीं देंगे, वो था। देखो इस धारा का प्रथम स्थान 8 का घन यानी 512 और द्वितीय स्थान 8 के घन का वर्ग जानो, 8 के घन का वर्ग यानी 512 का वर्ग, घन का वर्ग यानी 262,144। हाँ 262,144। इन्होंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, केवल इतना ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मूल संस्कृत में उन्होंने लिखा है आदि अष्टघन 512 तदुरूपी अष्टघन वर्ग 262,144 तदुपरूपी असंख्यात स्थानानी गत्वा लोक उत्पद्यते। तो उत्तरोत्तर आगे आगे जाकर यहाँ असंख्या स्थान जाकर लिखा ही नहीं उन्होंने, अस्य वर्गशलाकादि अत्र अपतितत्वात् अनुक्त इति अवसेयः, यानी उसकी वर्गशलाका वगैरह उसमें आती है ऐसा समझ लेना। यह उन्होंने क्या लिखा है, उत्तरोत्तर आगे आगे जाकर लोक गुणकार शलाका वर्गशलाका अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल की प्राप्ति होती है। अब ये गुणकार शलाका क्या है हमको मालूम नहीं, वो बताएंगे आगे। तो यहाँ तो वर्गशलाका दी कहते हैं और तत्व असंख्यात स्थानानी गत्वा गुणकार शलाका राशि उत्पद्यते। वो पूरा ही ट्रांसलेशन कितना बड़ा हो गया उनके, तो गाथा तो इतने में ही चला जाता है। कहाँ लिखा है विशेषार्थ में? इससे असंख्या स्थान आगे जाकर लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण स्वरूप लोक उत्पन्न होता है। इस लोक की वर्गशलाकादि इस धारा में नहीं आती, अतः नहीं कही गई है ऐसा जानना चाहिए। अस्य वर्गशलाकादि अत्र अपतितत्वात्। उन्होंने हाँ गाथार्थ में उन्होंने नहीं लिया, उसको विशेषार्थ में ही ले लिया। अच्छा मूल गाथा में ठीक, तम जान विरुय गयम घनागणम अठ बिंद तवगम लोगो गुणकार सला वग्ग सलद्ध छदादि पदम। हाँ नीचे लिखा, ये जो संस्कृत है वो विशेषार्थ है, वो संस्कृत का वो भाषांतर है। अच्छा यानी यहाँ केवल वो दो जो लाइन है गाथा की उसका अर्थ दिया है और बाद में जो संस्कृत में विशेषार्थ दिया है उसका ये वो अलग से किया उन्होंने ट्रांसलेशन। संस्कृत टीका है उसका ट्रांसलेशन विशेषार्थ में। ये अपने निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ना संस्कृत टीका, संस्कृत टीका तो नहीं, वो तो माधव चंद्र त्रिवेदी देव ने, उन्हीं के शिष्य, पेज नंबर 8 में लिखा है। संपादन सामग्री के लेफ्ट साइड के पेज में, उसके पूर्व पेज में, ये चेतन प्रकाश पाटनी ने लिखा है ना, वो नीचे से दूसरा पैराग्राफ आपके उसमें है क्या? नहीं देखो जरा, संपादन सामग्री कहाँ लिखी है? हमारे में 8 नंबर है वो, उसके पूर्व के, वो किसने लिखा है? पहला पेज लास्ट में नाम किसका है नीचे? नीरज जैन नहीं, चेतन प्रकाश पाटनी ने क्या लिखा है? निवेदन लिखा है। नीरज जैन ने क्या लिखा? हमारे में कहा ही नहीं नीरज जैन का कुछ। उसमें वो लिखा है सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद की इस अद्भुत मौलिक कृति की संस्कृत टीका उन्हीं के शिष्य माधव चंद्र त्रैविद्य देव ने की है। वो भी आचार्य थे, मुनि थे वो भी। आपको मिला क्या? नहीं ना, हमारे में है वो, मेरी और ये जीरोक्स वाली पुस्तक है ना हमारी, पहले उसमें है। हाँ तो वो पेज उसमें नहीं है, रीड किया। लास्ट में डाला होगा उसको, वो कहाँ, कौन सी बात है वो? गणित की विशेषता में लास्ट है। हाँ हाँ हाँ, उसमें मेरे में भी है। गोमट सर की तो चामुंडरा ने लिखी है और फिर केशव जी वर्णी ने। हाँ माधव चंद्र ने मूल गाथाओं में कुछ कुछ वहाँ विशेषताएं, उनका योगदान दिया हुआ है। और ये लब्धिसार में भी सपनासार नाम का ग्रंथ माधव चंद्र का लिखा हुआ है पूरा। लब्धिसार की ओरिजिनल ग्रंथ की टीका है तो लब्धिसार तक ही सीमित है, यानी सपना की बात नहीं है उसमें, यानी चारित्र मोह की उपशमना तक उन्होंने लिखी है। केशव वर्णी की जो संस्कृत टीका है वो आधे ही लब्धिसार तक है, आगे शपक श्रेणी की जो बात है वो अलग से ग्रंथ मिला था टोडरमल जी को, माधव चंद्र का लिखा हुआ। तो उन्होंने मूल लब्धिसार ग्रंथ की जो गाथा है ना उसी का उसमें मिलता है सारा, पर उसको उन्होंने एक सपनासार नाम दिया था माधव चंद्र जी ने, केवल उसमें एक सपना की बात आई थी, इसलिए दोनों का मिलकर वो लब्धिसार सपनासार ग्रंथ हुआ। हाँ अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, देखो फिर से
अभी
नेमीचंद के समकालीन ना, उनके शिष्य ही थे ना, डायरेक्ट शिष्य थे उन सिद्धांत चक्रवर्ती, हजार वर्ष हो गए। हाँ तो भाई उसी समय हो गए ना, थोड़ा डिफरेंस होगा एज में, हो सकता है ना, यानी उनके समकाल में वो थे ना, उनसे वो पढ़े थे, उनके शिष्य थे। यानी उसके आगे जाकर हम गाथा तो पढ़ रहे थे, फिर से पढ़ेंगे शुरू से। द्विरूप वर्ग धारा में जो जो राशि वर्ग रूप है उस प्रत्येक राशि का घना घन, यानी घन का घन इस धारा में प्राप्त होता है, यानी वहां जो संख्या उसके रेस टू नाइन करना है, रेस टू थ्री होता है तो घन होता है, और उसका रेस टू थ्री करेंगे तो घनाघन, रेस टू नाइन होता है, यानी दो संख्या नौ बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो 500 बार आ गई। तो उसके घना घन इस धारा में प्राप्त होता है। इस धारा का प्रथम स्थान 8 का घन यानी हमारा 512 है ना, और द्वितीय स्थान 8 के घन का वर्ग यानी 512 का वर्ग। हाँ, उसकी वर्गशाला का एक है, एक है, हाँ, उसका वर्ग जाना। उत्तर उत्तर आगे आगे जाकर यानी इस धारा में कौन कौन सी आगे मिलने वाली है, तो कहते लोक, उसकी गुणकार शलाका। ये गुणकार शलाका क्या होते हैं वो अभी हमने नहीं देखा है, उसको बताएंगे। वर्ग शलाका, अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल की प्राप्ति होती है। ये किसके, वो लोक के वर्गमूल की बात नहीं है, अग्नि का जीवन की बात चलेगी आगे। प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर तेजस का एक जीव राशि उत्पन्न होती है, यानी ये जो गुणकार शलाका, वर्ग शलाका और अर्धच्छेद बताए ना, वो तेजस का एक जीव, अग्नि का एक जीवों की राशि कितनी है, टोटल नंबर ऑफ अग्नि का एक जीव कितने हैं, उसकी बात है। क्या तेजस का एक जीवों की संख्या का, असंख्यात लोक का वो प्रथम वर्गमूल है। तेजस का एक जीवों का प्रथम वर्गमूल, क्योंकि उसका वर्ग करने पर तेजस का एक जीव राशि आती है। इसका अर्थ क्या है, तेजस का एक जीव जो संख्या है असंख्यात लोक वाली, अन्य काई कौन से सबसे छोटी संख्या ये है, अन्य जो चार कायिक है ना, वायु कायिक वगैरह, उसमें वो अग्नि कायिक कम है, तो उसमें वो सारे आए पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म बादल सब। आगे आगे असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर क्रमशः तेजस्काय स्थिति की वर्गशला का अर्धच्छेद वो प्रथम वर्गमूल उत्पन्न होते हैं। अभी हमने देखा तो तेजस्काय जीवों का प्रमाण देखा, तेजस्काय की स्थिति का अर्थ है जीव तेजस्कायकों में उत्पन्न हुआ कोई, और लगातार मरकर अग्निकायक 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 अग्निकायक, हाँ, तो उसको कहेंगे उसकी काय स्थिति। यहाँ लिखा ना तेजस्काय स्थिति, यानी लगातार तेजस्कायिक में रहने का उत्कृष्ट काल। हमने हमेशा देखते हैं ना हम असंख्यात लोग महाबंध में होता है ना, वो मनुष्य गति नहीं बांध रहा है, उसका अंतर कितना हम हमेशा निकालते थे असंख्यात लोग। वो वाला कौन सा असंख्यात लोग, क्योंकि लोक के आगे बहुत सारी राशि असंख्यात लोग की कहलाएगी, पर उसमें भी हिना दिखता है ना। तेजस्कायिक जीवों की संख्या कितनी है, असंख्यात लोग, और तेजस्कायिक में रहने का काल कितना है वो भी असंख्यात लोग, उसमें तो प्रदेशों को समयों में कन्वर्ट करना, रहने का उत्कृष्ट काल,
वो भी असंख्यात आगे जाएगा ना।
अरे वो भी कितने
बहुत आगे,
तो बहुत, क्योंकि उसकी गुणकार शलाका आएगी, उसके वर्ग शलाका आएगी, उसके अर्धच्छेद आएगी, उसका प्रथम वर्गमूल आएगी, वो सब उसी धारा में आएगी। कितना बड़ा काल है, और गुणकार शलाका भी हमने वो शलाका त्रय स्थापित करते ना, उसमें वो गुणकार शलाका आती है, इसलिए वो अभी हमको क्या है मालूम नहीं है गुणकार शला का। हाँ, तो तेजस का एक स्थिति की वर्गशला का अर्धच्छेद और प्रथम मूल उत्पन्न होते हैं। इस प्रथम मूल का एक बार वर्ग करने पर तेजस का एक स्थिति उत्पन्न होती है, स्थिति कही यानी तेज अग्निकायकों की काय स्थिति जिसको हम कहेंगे,
तो भी काय स्थिति है ना?
वही वही है, यहाँ तो एक प्रथम वर्गमूल तक बताए, उसके बाद वो नेक्स्ट स्थिति का नंबर आएगा, काय स्थिति आ गई। पुनः पुनः असंख्यात असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर क्रमशः अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र की वर्गशला का, देखो हम देख रहे सर्वावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है उसका क्षेत्र कितना है, मैक्सिमम कहाँ तक जानेंगे, क्योंकि असंख्यात लोग, पर यह असंख्यात लोग कितना बड़ा असंख्यात है इससे ख्याल आता है। और यहाँ तो उसकी वर्गशाला का मिलेगी अभी, कौन से स्थान पर वो पाया जाएगा, और ये घना घन धारा है तो कितना बड़ा वो उसकी संख्या होगी। वो केवल द्विरूप वर्ग धारा में इतने स्थान आगे जाते हैं, और घना घन धारा में जाएंगे तो वो संख्या कितनी बड़ी होती चली जाती। हाँ, उसकी वर्गशाला कितने बड़े ज्यादा है, उसका क्षेत्र जो असंख्यात लोक है वो और कितना ज्यादा होगा। वो वर्गशाला का है नहीं, उतने स्थान जाकर वो जो वर्गशाला का नंबर है ऊपर, वो इस स्थान में है, इस धारा में है, फिर उसके अर्धच्छेद, फिर आगे असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्गमूल, और बाद में एक बार वर्ग करने पर अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण प्राप्त होता है। देखो, आपको ये प्रश्न होगा, कहीं कहीं क्षेत्र के लिए भी असंख्यात लोक कहा है और कहीं कहीं काल के लिए भी असंख्यात लोक कहा है। तो जब काल के लिए असंख्यात लोक कहेंगे तो उसके प्रदेशों को समयों में कन्वर्ट करना है, जितने नंबर ऑफ प्रदेश, यहाँ तो संख्या बताई जाती है असंख्यात। हाँ, असंख्यात लोक में जैसे हमेशा कटोरी का उदाहरण है, एक कटोरी चावल, उसमें 1000 चावल हो गए मान लेते हैं, तो 1000 चावल यानी 1000 का प्रदेश को भी गिनने का माप है वो, और समयों का भी माप है। इस तरह से असंख्या हम देखते, अंगुल के असंख्यात वे भाग में इतने प्रदेश है, उसको समयों में कन्वर्ट करो, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती। तो असंख्यात लोक में कितने प्रदेश होगी उसको समयों में कन्वर्ट करो तो काल कितना बड़ा होगा। नहीं भाई, क्योंकि यहाँ जो काय स्थिति बताई थी ना अग्निकाय की, तब तो हमें काल गिनना था। जब अग्निकायकों की जीव राशि बतानी थी तो वो जीवों की संख्या गिननी थी, और यहाँ भी अवधि ज्ञान का क्षेत्र गिनते हैं तो उसको कहाँ तक को जानते उसको गिनना था। उत्कृष्ट क्षेत्र, हाँ वो तो है ही ना, वो क्योंकि जघन्य में जघन्य जो देशावधि का जो उत्कृष्ट है ना। हाँ 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 बिल्कुल, और वो हर जगह आते,
अभी तो
गाथार्थ ही चल रहा है,
गाथार्थ में भी चल रहा
है, ये मूल गाथा में अभी हमने पढ़ा था ना। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र ही पूरा लोक है, और उसके आगे तो कितने वो तो असंख्यात परमावधि के जो भेद देखेंगे, कितने परमावधि भी के असंख्यात भेद है, उसमें हर एक एक भेद के लिए वो असंख्यात लोक चला जाता है। तो ये वाला असंख्यात लोक कितना बड़ा होगा, 76। उत्कृष्ट क्षेत्र मात्र असंख्यात लोकम उत्पद्यते,
क्षेत्र से लोक मात्र में अभी असंख्यात शक्ति अपेक्षा है, शक्ति कितनी मिली है वो बात बता दे।
वही तो यहाँ वो उसका भाषांतर 81 पेज पर किया है, ये संस्कृत का। देखो 81 पेज पर पहला पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन, सर्वावधि ज्ञान की योग्यता ऊपर लिखा ना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र लोक मात्र है, पेज नंबर 81। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ही नहीं, वो रूपी पदार्थ ही लोक में रहते हैं, तथापि शक्ति अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र कहा गया है। यहाँ लिखा ना, सर्वावधि ज्ञान की योग्यता मात्र लोकाकाश के ज्ञेयों को जानने की ही हो ऐसा नहीं है, यदि असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र में अवधि ज्ञान का विषयभूत ज्ञेय होता सर्वावधि उसे भी जान लेता, ऐसी शक्ति सर्वावधि ज्ञान में है, यानी प्रखर शक्ति की बात है। ऐसा ही आता है ना, केवल ज्ञान में ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते हैं, लोक भी नहीं लोकालोक होते तो भी उनकी प्रखर शक्ति है उसको जानने की, नहीं तो वो लिमिटेड हो जाएगी ना। अब यहाँ बहुत सारे शब्द है ना, गुणकार शलका वगैरह हमको मालूम नहीं क्या है, उसको देखेंगे। अब ये विशेषार्थ है ना, वो संस्कृत टीका का भाषांतर है। द्विरूप वर्ग धारा में जो राशियां वर्ग रूप है उन राशियों का घना घन ही इस धारा में प्राप्त होता है। घन के घन को ही घना घन कहते हैं। जैसे द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान दो है, यही तो प्रथम स्थान धारा में उसको स्थान दिया, परंतु वर्गशाला का हम वर्ग स्थान से गिनेंगे। इस दो का घन जो आठ है वही द्विरूप घन धारा का प्रथम स्थान आठ है, और इस आठ का घन ही द्विरूप घनाघन धारा का प्रथम स्थान 512 है। अर्थात दो का घनाघन यानी उन्होंने तीन बार ऐसे वो दो गुना दो लिखे, यानी टोटल 9 बार, और तीन तीन के ऊपर वो ऐसे ओवर है वो लाइन बता दी समझने के लिए, तो 512 है जो द्विरूप घनाघन धारा का प्रथम स्थान है। इसी 512 का वर्ग 262,144 द्विरूप घनाघन धारा का दूसरा स्थान है, यानी वो पहला वर्ग स्थान है। जो द्विरूप घन धारा के दूसरे स्थान 64 के घन स्वरूप है, और द्विरूप वर्ग धारा के दूसरे स्थान 4 के घनाघन स्वरूप है। अभी मूल में संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आगे बढ़ दें। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर लोकाकाश के प्रदेगी। मैंने मेरा कुछ छूट गया, एक मिनट, मैं पीछे का देखने गई ना, द्विरूप घनाघन दूसरा स्थान है। हाँ, जो द्विरूप घनधारा के दूसरे स्थान 64 के घन स्वरूप है, और द्विरूप वर्ग धारा के दूसरे स्थान 4 के घनाघन स्वरूप है। ये 4 को 9 बार लिखा है, उसमें तीन तीन को उन्होंने एक एक लाइन ड्रॉ की है, है ना? अर्थात 262,144 द्विरूप घनधारा के मेरा बीच का रह गया था उसको मैं पढ़ रही थी। दूसरे स्थान 64 का घन है, और द्विरूप वर्ग धारा के दूसरे स्थान 4 का घनाघन है। इससे यानी 262,144 से असंख्यात स्थान आगे जाकर लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण स्वरूप लोक उत्पन्न होता है, यानी वहां उनके प्रदेशों की संख्या को गिनना है हमको, तो यहाँ संख्याओं की बात है। इस लोक की वर्गशलाकादि इस धारा में नहीं आती, अतः नहीं कही गई है ऐसा जानना चाहिए। आपको याद होगा हमने जब जगत श्रेणी का प्रमाण लाया था ना, तो विरलन और देय से लाया था, क्योंकि अंगुल घनांगुल है उसको पल्ल के अर्धच्छेद के असंख्यातवे भाग बार लिख कर उसका विरलन और उसका देय देके उसको आई थी। तो जगत श्रेणी की वर्गशाला का उसमें नहीं आएगी, तो जगत श्रेणी के घन रूप लोक की भी वर्गशाला का नहीं आएगी, ये घटित होता है ना, इसलिए कहते वो नहीं कही है, डायरेक्ट लोक की बात ले ली उन्होंने। बीच में जो कोई स्थान आए थे ना उसके घन आएंगे यहाँ पर, जो जो हमने देखे वहां पर द्विरूप वर्ग धारा में उनके घनाघन इसमें आएंगे, द्विरूप घन धारा में जो है उसके घन इसमें आएंगे। अब कहते उसके वर्गशलाकादि उसमें नहीं है। लोक के प्रमाण से असंख्यात स्थान आगे जाकर, यानी लोक का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, हाँ, असंख्यात स्थान आगे जाकर, अभी तो गुणकार शलाका आएगी, किसकी? अग्निकाई के गुणकार शलाका, वही तो गुणकार शलाका का अर्थ समझते हैं। हमने बताया था एक बार शलाका स्थापित की, शलाका मूल राशि लोक थी, तो लोक बार गुणाकार किया आपस में, एक बार किया वो महाराशि हुई, शलाका में से एक माइनस किया। पहली बार शलाका राशि कितनी थी? लोक प्रमाण की। अब ऐसी लोक प्रमाण बार वो गुणकार करते 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 जो राशि उत्पन्न हुई ना, कितना असंख्यात लोक होगा वो। अब दूसरी बार वो शलाका स्थापित करना है, वो वाली महाराशि, फिर उससे आपस में गुणा करके जो महामहाराशि आएगी उसको भी शलाका, वो तो तीसरी बार किया। और पूरा गुणकार शलाका कितनी है? पहली बार की शलाका प्लस दूसरी बार की शलाका प्लस तीसरी बार की शलाका, और साढ़े तीन बार होते हैं उसमें, तो इतना जाके वो गुणकार शलाका कहलाएगी, वो भी इतनी बार होती है। लोक के असंख्यात वर्गस्थान आगे जाने पर वर्गशलाका प्राप्त होती है। अग्नि काय के गुणकार शलाका ही, वर्ग शलाका तो और आगे चली जाएगी, ये तो गुणकार शलाका है। देखो फिर पढ़ेंगे, लोक के प्रमाण से असंख्यात स्थान आगे जाकर गुणकार शलाका राशि उत्पन्न होती है। अब ये गुणकार शलाका क्या है उसको समझाएंगे उन्हीं की भाषा। 76 हाँ पता है ना, लोक है, फिर गुणकार शलाका है, वर्ग शलाका, बाद में अर्धचर, ये सब किसके है? अग्नि काय के है। हाँ बहुत बड़ी है परंतु अन्य से छोटी है, ऐसा कह इतना बड़ा। और उसकी काय स्थिति कितनी बड़ी है? फिर काय स्थिति के लिए उसके आगे असंख्या स्थान चले जाने पड़ेंगे। यानी कोई जीव अग्नि कायिक में गया तो कितने काल तक रहता है वो उसका प्रमाण है। हाँ परंतु असंख्यात लोग का भाववासन नहीं होता ना सबके लिए असंख्यात लोग कह देते हैं, उसमें जो अल्प बहुत वह है। अभी अवधि ज्ञान का असंख्यात लोग तो इससे कितने आगे होगा, तो बीच में और बहुत सारी राशि आती है। देखो ये गुणकार शलाका किसे कहते हैं? समाधान, जगत श्रेणी के घन स्वरूप लोक को, यानी लोक को, यानी एक लोक में जो संख्या है ना, लोकाकाश के प्रदेशों प्रमाण संख्या, उसको लोक कहेंगे। उसको शलाका विरलन और देय रूप से तीन जगह स्थापन करना चाहिए। पहले जो हमने वो शलाका त्रय उन्होंने समझाई थी ना, वो तो असंख्यात असंख्यात पर समझाई थी, जगन्य असंख्यात असंख्यात को स्थापित करके वो कैसे गिनना, शलाका त्रय किसको कहते, वो वहां बात हुई थी। यहाँ तो लोक से ही शुरुआत है, लोक ही वो मध्यम असंख्यात असंख्यात का बहुत बड़ा भेद है। उसको पहले शलाका बनानी, उसी को विरलन करना और उसी को देय रूप से देना, सबका प्रमाण लोक। तो लोक प्रमाण तीन राशि करना है, एक लोक प्रमाण तीन राशि करना। देखो जगत श्रेणी के घन स्वरूप लोक को शलाका विरलन और देय रूप से तीन जगह स्थापन करना चाहिए। लोक स्वरूप विरलन राशि का एक एक विरलन कर प्रत्येक एक अंक के ऊपर लोक देय रूप देकर परस्पर गुणा कर देना चाहिए। यानी वो देय रूप राशि है ना, हर एक 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 के माथे पर रखनी है, देय राशि के फिर टुकड़े नहीं करना है, उतनी उतनी देय राशि हर एक को देना है, हर एक एक को। यानी लोक में जितने हैं संख्या उसको एक 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 लिख दो, और हर एक के माथे पर लोक 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 लिख दो। ये तो इतनी बड़ी संख्या होगी, परंतु तो एक बार गुणकार होगा तो शलाका राशि में से एक माइनस करना, लोक प्रमाण राशि में से
एक ही माइनस।
हाँ वो एक बार गुणकार हुआ, जो संख्या आएगी अभी दो, जो संख्या आएगी उसका विरलन करो उसी को, क्योंकि वो असंख्यात लोक तो पहली बार आ जाएगी, क्योंकि लोक को लोक बार लिखा है ना, यानी असंख्यात लोक तो हो ही गए। लोक को एक बार लिख के गुणा करते तो भी लोक का वर्ग होता है, वर्ग लोक गुणा लोक, यानी लोक गुणा असंख्यात होता है ना, लोक का एक बार वर्ग करने पर ही असंख्यात वर्ग हो जाता, असंख्यात लोक होते हैं। यहाँ लोग को लोग बार लिख के गुणा करना, तो एक बार गुणकार हुआ, जो राशि आई उसको विरलन देय करना, फिर उस राशि को उतनी बार लिखकर आपस में गुणा करना, ये गुणकार दो बार हुआ। तो जो लोक प्रमाण शला का राशि, उसमें से पहली बार गुणकार हुआ तो एक माइनस किया, दूसरी बार हुआ तो दो माइनस किए, तीसरी बार हुआ तो तीन माइनस किए, हर बार वो कितनी जितनी बार गुणकार करो राशि कितनी 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 बड़ी होती है। वो जो लोक प्रमाण राशि कंप्लीट हो गई उसका विलन और उसी को देय करना। हाँ उसी लोक को देने, हर बार देय और विरलन बदलेगा। छोटी संख्या दो है पार्टी के, वही तो हम कह रहे हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाती है। जैसे चार का विरलन किया पहली बार, चार हमारी शला का राशि, चार ही का विरलन किया, चार को ही देय रूप से दिया, एक बार गुणकार किया तो 256 आ गए। एक बार गुणकार किया ना तो यहाँ माइनस वन किया, 256 को विरलन करो, हर एक के ऊपर 256 लिखो, 256 रेशियो 256 हो गए। ये दूसरी बार किया माइनस टू हो गए। हाँ अभी 256 को एक बार गुणा करो तो 85 आती है, तो कितनी पुढ़े आगे चली गई। ये तो अभी दो ही बार गुणकार हुआ है, तीसरी बार जो राशि आएगी 256 रेशियो 256 उसका विरलन करो, उसी को देय रूप से दे दो, तब जाके तीसरी बार वो हो गया।
आपने वो चार लिखी है वहाँ पे लोक आएगा।
हाँ शला का लोक और पहली बार विरलन भी लोक। हाँ ये चार लिखी है ना शला का, इसके बदले यहाँ लोक लिखो, माइनस वन टू थे वो, तो लोक प्रमाणी कितने हैं तो उसमें माइनस वन वन करते वो कब खलास होगी, और बाय दैट टाइम वो कितने बार गुणकार होते हैं, यानी लोक प्रमाण बार वो गुणकार का एक बार गुणकार करते तो ही संख्या इतनी बड़ी होती, तब जाके एक बार शला का हुई, जो वहाँ संख्या आएगी फिर उसको शला का बनाओ। लोक में लोक नहीं, वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी असंख्य। ये पहली बार शला का हुई, हाँ वो तो एक बार हो गया, शला का राशि एक बार समाप्त हो गई लोक प्रमाण। फिर जो जो आएगी वहाँ राशि महाराशि, ये हो गया ना सब कंप्लीट हो गया लोक, एक बार शला का हुई
माइनस वन टू करते हुए पूरा हुआ तभी एक बार शला का
हुई। अभी दूसरी बार शला का फिर लेना है।
ये लोक प्रमाण पूरा खत्म हो गया, एक शला का हुई,
एक शला का हुई। हाँ यही उदाहरण लेंगे, तो एक बार शला का हुई फिर वो जो राशि आएगी उसको यहाँ रखो, जो असंख्यात लोक वाली होगी, ये जो कोई बहुत बड़ी असंख्यात वाली यहाँ रखना है, ये शक्ल शलाका हुई वही वाली विरलन हुई उसी को देय करना, फिर उसी का एक बार गुणकार, दो बार गुणकार, तीन बार। अब ये शलाका राशि कितनी बड़ी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। नहीं नहीं हम तो इतना है, यानी ये कौन सी राशि से कौन सी राशि कितनी असंख्यात गुणा है, लोक से भी ये कितना है, और ये गुणकार शाला का भी निकाल रहे, मूल अग्नि का एक की राशि कितनी होगी, वो अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना होगा, यानी इसका हमें थोड़ा अंदाजा आता है कि असंख्यात के जो असंख्यात वेरिएशन है तो वो क्या हो सकता है, इसके वर्ग कितने बार हो गए, क्या क्या होगा। क्योंकि वो सारे प्रत्येक शरीर ही है ना, अग्नि काई जो प्रत्येक शरीर ही है, और अग्नि कायिकों के असंख्यात शरीर है उसके अंदर, तो जो दिखाई देती है वो अग्नि कायिकों की अवगाहना छोटी होती है, जैसे जल का एक बूंद है, उसमें जल का एक असंख्यात है, इतनी सी मिट्टी रेती कण है उसका, उसमें असंख्यात पृथ्वी का एक है, यानी उसके शरीर की अवगाहना भी इतनी छोटी, उसमें सूक्ष्म भी कितने हैं आगे ना और बादर। हाँ वो बात अलग है, वही तो। हाँ और ये तो असंख्यात की बात चल रही, और हमने कितना अनंत काल गमाया होगा, उस अनंत का तो माफ ही मत सोचो। और ऐसे असंख्यात परावर्तन करते हम आए, यानी हम है उसका अर्थ, हम तो हम है तो चलो चलो हम इतना मनुष्य है चलो मौज मजा करो, ये इधर घूमो उधर घूमो ये करो, यानी इसकी जो हमको रेरिटी कहो ये तो दुर्लभता पता ही नहीं चलती। और कितना काल अनंत का क्या माप हो सकता है और कितना गया है, क्योंकि हम है ना, हम तो अनादि से बिगिनिंग ही नहीं है।
हम लोग के सपने पहले किया होगा ना,
किया है
तो भी भूल गए। चार साल तो एक साल की छोटी का भी याद नहीं आता है, मैंने पहले कुछ खाया था वो याद नहीं है। तो ऐसा ये भी हम लोग करे पहले भी इतना किया होगा,
किया होगा ना, पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे।
अभी ऐसा जो करना है तो वो ऐसा है, लगता है ना कि कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ हम लोग अभी तो जान रहे
पर मैं जानने वाला हूँ। हाँ उसको नहीं लिया, बाकी सब दुनिया को ले लिया। हाँ और मैं शरीर रूप हूँ, मैं इतनी बुद्धि वाला हूँ, मैं राग रूप हूँ, ये मान लिया है। ये सब इतना जानने जरूरी नहीं है, जानना तो क्या है, मैं कौन हूँ इसको जानना है, उसको नक्की करना है। बिल्कुल जिसको कहें दृढ़ प्रतीति उसकी हो जाए, ये किसके ज्ञान में आ रहे हैं, हमारा ये जानने वाला तो मैं हूँ, पर हमने अनंत काल से हर भाव में, ये तो इस भाव में जाने दो ना, ऐसा इस भाव हमारे अभी इतनी उम्र हो गई 65-66 साल हो गए, अभी कितने साल बचे, 5 मिनट है कि नहीं वो पता नहीं हमको, तो ये भाव चला गया, अभी आगे का क्या भाव होगा, कहाँ होगा, या ऐसे फिर दोबारा ऐसे, क्योंकि ये भाव मनुष्य भाव जो मिला है उसमें हमारी प्रायोरिटी किसको रही है, और सुबह से रात तक का हमारा टाइम है, तो क्या क्या नहीं, कुछ आवश्यक बातें हम सोचते नहीं, ये तो करना ही चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है, तो ये तो है, ऐसे पूरा दिन निकलता है, एक दिन तो नहीं, अभी हम जन्म से कितने दिन है, नहीं कल करेंगे, वो कल आता ही नहीं ना, अभी तक क्या जिएंगे, दूसरे तो मर रहे हम देख रहे है, परंतु हम तो अमर है। क्या होगी अभी कैसी, अभी रोज एक न्यूज़पेपर खोलो तो वैराग्य हो जावे, ऐसी बात है, रोज का कोई दुर्घटना होते है, कुछ कुछ हो जाता है, कौन से जीव पर कब कैसी परिस्थिति हो जावे कुछ कह नहीं सकते। हम तो हमने इतना सब कमाया गमाया, हमें रखा है, वी आर सेफ, ऐसा लगता है। हाँ आज का दिन तो ऐसे चला जाएगा ना, अभी नॉर्मल हेल्दी भी नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है, अभी आयु बांध के आया है, कलास हो गई, वही तो जो है उसके हमको उसकी महत्ता नहीं आती। हाँ अभी मुझे एक बात, अभी हम भोपाल का हमारा कैंसिल हुआ ना प्रोग्राम इनकी बीमारी के कारण, तो वहाँ एक माधुरी जैन है, डॉक्टर है स्वयं, तो उन्होंने एक वाक्य बोला, देखो कैसे है ना, तो हम तो सोचते हैं नेक्स्ट शिविर में जाएंगे, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए जब मिले तब उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने फोन पर ये बात की मुझे कि हम तो ऐसे सोचते नहीं, नहीं अभी तो इस बात तो हमारी ये तकलीफ है, हम नेक्स्ट बार हम नक्की करेंगे। अरे पर वो तो सुनाने वाला भी मिलेगा कि नहीं, और हम भी रहेंगे कि नहीं, क्या पता। हाँ एज होने चाहिए। हाँ इस उम्र में जितनी आपकी पकड़ने की शक्ति है, मैं उससे छोटे हो इसमें तो और ज्यादा, मैं तो कहती हूँ आप लोग लकी हो, छोटे उम्र में इसका रस भी है और बुद्धि भी है,
तो भी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि एज होनी चाहिए,
ऐसे ही लग रहे हैं। ये उम्र क्या है तुम्हारी, खेलने की है, हाँ मौज मजा करने की है,
तो
वही तो लोग मेजॉरिटी तो उसी में है ना, ये रेयर लोगों को ही मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना उसमें। बाकी पूरी लाखों क्या करोड़ों सब जो जीव ऐसे इसी मौज मजा करेंगे, वो इसी को जीवन मान लिया उन्होंने, वो तो ऐसा कहें कल किसने देखा, जो मौज मजा कर लो आज, ये उनका कहना
तो मैं भी ऐसे बोलती कल किसने
देखा आज पढ़ना है लोग उनका, हाँ मैं समझ गई ना, मैं समझ गई,
एज होनी चाहिए, सबकी एक एज होनी चाहिए, ये
अभी
ये नहीं करना
चाहिए। हाँ, वो एज के माफक उन्होंने बना लिया, इस एज में ये करना, इस एज में ये करना, इस एज में, हाँ नहीं नहीं यही बात चलती ना आमतौर पर, यही चलती बात। हाँ वो पिनांग यहाँ पहले आता था, उसको भी लोग बताते ये क्या तेरी उम्र, रोज शाम को कहाँ स्वाध्याय में जाता है, वो यहाँ रहता था ना कभी, अरे तो कई बार घूमने चलो, इधर रेस्टोरेंट चलो, मौज मस्ती करने चलो, ये उम्र है क्या तुम्हारी, कहने तो ऐसे कहते सब। हमारे अरविंद भाई को कहते थे रोज, वो जाते थे वहाँ मित्र वगैरह सब इकट्ठा होके चर्चा करते थे, तो यहाँ आने लगे, कहाँ जाता है अभी रोज, अभी और कितने दिन चलेगा अच्छा अभ्यास है उनका। हाँ वो बोलते नहीं ज्यादा हमारे जैसा, और वो अभ्यास ज्यादा है। और आप लोग आते तो हमारे भी आगे बढ़ना होता है, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं उसमें और डीप थिंकिंग होता है, या पढ़ाते समय और उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, हमको समझना है तो धड़ाधड़ पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है ना,
ऐसा पढ़ने में समझ नहीं आता बस पढ़ जाते हैं।
हाँ क्योंकि उसकी जो गहराई तक उसको समझना है,
हाँ
गुणकर शलका होती होगी कुछ,
हाँ
ऐसा पढ़ लेते हैं, हाँ उसमें है बस है बस इतना सुन लिया, पर उसकी कितनी वो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ ख्याल में आती है। और ये केवल ज्ञान की महिमा तो इससे आती है, ये तो श्रुत ज्ञानियों ने, हम श्रुत ज्ञानियों के लिए लिखा हुआ है, ये तो आचार्यों ने लिखा है, तो आचार्य तो समझ गए हैं और उनको वो शिष्यों को समझाना चाहते, उनके शिष्य ने और सरल किया, ये अभी हम टीकाकारों ने और सरल किया उसको, हमारे आपको समझने के लिए तो लिखा है, उसमें इतना मैटर है, तो केवल ज्ञान क्या होगा। हाँ उसकी महत्ता ये करना नियोग आदि पढ़कर होती है। और गणित में तो क्या है, गणित तो गणित है, उसमें तो कुछ वो कोई धर्म की बात नहीं है, जैनियों का गणित अलग है और उसमें कुछ अलग बातें आती है, 2+2 कुछ अलग होता है, ऐसे थोड़ी है, ये तो कोई भी उसके साथ मिलान करके देख सकता है ना। हाँ देखो यहाँ गुणकार शलाका किसे कहते हैं, तो जगत श्रेणी के घन स्वरूप लोक को, पहले हमारी लाशी लोक प्रमाण, शलाका विरलन और देय रूप से तीन जगह स्थापन करना चाहिए। शलाका का अर्थ है उसकी संख्या गिनना है हमको, 1-2-3 काउंट करना है। ये जो शलाका राशि बनाई है, एक बार गुणकार करेंगे उसमें 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, वो पूरी राशि समाप्त होने तक उसको वो शलाका राशि कहेंगे। विरलन राशि का अर्थ होता है जो राशि वो पहली बार ऐसे एक एक करके बिखेर देंगे, देय ने उसके हर एक के एक एक के माथे पर जो राशि रखेंगे उसको देय राशि कहेंगे। अब शलाका तो वो समाप्त होने तक तो उतनी ही रहेगी, विरलन और देय हर बार जितना गुणकार का प्रमाण आएगा ना वो लास्ट में उसके, हाँ वो होगा स्थापन करना चाहिए। लोक स्वरूप विरलन राशि का एक एक विरलन कर, विरलन करना है उसको बिखेर देना, स्प्लिट करना, प्रत्येक एक अंक के ऊपर लोक देय रूप देकर परस्पर गुणा कर देना चाहिए, यानी लोक रेस टू लोक हो गया, यहाँ एक बार गुणा हुआ, अतः लोक स्वरूप शलाका राशि में से एक अंक कम कर देना चाहिए। यहाँ गुणकार शलाकाएं एक कम लोक प्रमाण होती है। यहाँ पर गुणकार शलाका राशि का प्रमाण एक कम लोक मात्र इसलिए है कि प्रथम देय रूप लोक को दूसरे देय रूप लोक से गुणा करने पर एक गुणकार शलाका होती है। एकदम लास्ट तीसरे देय रूप लोक से गुणा करने पर दूसरी गुणकार शलाका उत्पन्न होती है जो तीन से एक कम है। अच्छा, इसी प्रकार क्रमशः गुणित करते हुए अंतिम देय रूप लोक से गुणा करने पर एक कम लोक प्रमाण गुणकार शलाकाएं होती है। अरे गुणकार शलाका मैं जो बता रही थी वो अलग बात है। ना 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 ना, उन्होंने क्या किया है गुणकार शलाकाएं ने, कितनी बार गुणकार हुआ, जो हमने चार को विरलन किया ना, गुणकार के चिन्ह कितने बार लिखे,
तीन बार।
तो तीन बार गुणकार हुआ, ये कहना चाहते हैं। यानी लोक का आपस में कितने बार गुणकार किया, ये बात है। यहाँ क्या लिखा है,
वो तो चार बार हुआ ना लोक का, तीन राशि।
शलाका राशि अलग बात है और गुणकार शलाका अलग बात है, ये और उसमें और बढ़त भी है। ये तो हमने जो बताया ना, एक बार गुणकार हुआ तो शलाका राशि में से एक माइनस करना, वो तो बराबर है, परंतु एक बार गुणकार किया, एक बार गुणकार कहने लोक का आपस में कितनी बार गुणकार किया,
एक कम लोक बार
हुआ, तो लोक माइनस वन हमने एक बार लिख दिया। दूसरी बार यहाँ जो 256 आए, 256 को 256 बार लिखा,
वो भी एक कम,
तो एक कम 256 हो गए। वो यानी उसको वो गुणकार शलाका और कितनी होगी, हमको केवल वो हम शलाका शलाका राशि प्रमाण ही हम गुणकार शलाका मान लेते थे। ये शलाका उसमें से एक एक माइनस करना, वो तो बात बराबर है, परंतु हमने एक बार गुणकार किया तो एक बार गुणकार किया उसमें हमने तीन बार गुणकार किया, यानी यहाँ तीन बार किया, यहाँ 255 बार किया, और इनकी एडिशन होती चली जाएगी। हमने इसको एक बार दो बार तीन बार पकड़ा, वो तो शलाका राशि के लिए वो पकड़ना, पर गुणकार शलाका उसमें और ज्यादा हो जाएगी। हाँ ये वहाँ अलग बात थी, यहाँ गुणकार शला का अलग कहे थे। हाँ नहीं नहीं, वहाँ तो केवल मूल संस्कृत में लिखा ना उन्होंने। तत्र से गुणकार शला का रूपों असंख्यात लोक मात्रा भवंती, यानी लोक लोक को लोक बार लिखा ना, लोक को लोक बार लिखा, यानी लोक बार तो उसका गुणकार हुआ कि नहीं, तो उसमें से एक माइनस लोक माइनस वन हुआ।
उसको क्या बोलते हैं,
गुणकार। यानी ये हिंदी में इसी का है, जो संस्कृत का ही है। देखो फिर से पढ़ेंगे,
पहले
ब्रैकेट से फिर से पढ़ेंगे, यानी ये गुणकार शलाका तो हम तो केवल शलाका राशि मात्र ही मानते थे, यहाँ तो और बड़ी हो जाएगी। देखो चार का कितने बार गुणा किया ये देखना है, यहाँ तीन बार गुणा किया, फिर जो विरलन राशि हमारी 256 आई, 256 को आपस में कितने बार गुणा किया, 255 बार। अभी यहाँ पूरा पढ़ेंगे
तो बड़ी कैसे आई, हम लोग वही कर रहे थे ना, अभी भी उल्टा छोटा है। आप चार बार को एक बार कह रहे हैं और फिर उसको 256 को एक बार, तो
दूसरी बार हुआ। हाँ ये बड़ी होगी, वही तो ये बड़ी होने वाली है। वो नहीं, देखो शलाका राशि से गुणकार शलाका बहुत बड़ी आएगी, ये मुझे कहनी, वही मैं कह उसी को बड़ी कहा मैंने। शलाका राशि हमारी कितनी थी पहले बार, यहाँ चार लिखी थी, तो गुणकार राशि चार ही नहीं होगी एक बार शलाका होने पर, तो यहाँ तीन बार, यहाँ 255 बार और यहाँ और तीसरी बार और भी हो जाएगी, गुणकार तीन बार होगा ना। अब ये पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा, ये कुछ विशेष है बात, कल ही देखना पड़ेगा। हाँ इतना तो पढ़ लेते, फिर दोबारा कल ले लेंगे इसी को। देखो यहाँ पर गुणकार शलाकार राशि का प्रमाण एक कम लोक मात्र इसलिए है, प्रथम देय रूप लोक को विरल देय लोक प्रमाण किया था, दूसरे देय रूप लोक से गुणा करने पर एक गुणकार शलाका होती है, यानी गुणकार शलाका कितने बार गुणा किया लोक को लोक से, एक बार। तीसरे देय रूप लोक से गुणा करने पर दूसरी गुणकार शलाका उत्पन्न होती है जो तीन से एक कम है, इसी प्रकार क्रमशः गुणित करते हुए अंतिम देय रूप लोक से गुणा करने पर एक कम लोक प्रमाण गुणकार शलाकाएं होती है, यानी एक बार आपस में गुणकार किया तो लोक को लोक से कितने बार गुणा किया, एक कम लोक बार किया, चार को आपस में हमने चार बार लिख के गुणा किया ना, तो चार को एक बार गुणा किया, दो बार गुणा किया, तीन बार गुणा किया, जो संख्या देय रूप से दी थी उसमें माइनस एक करके उतनी बार आपस में गुणा किया,
तो क्या आएगा
उसके, वो तो गुणकार शलाका कहेंगे, उसकी गुणकार शलाका तीन है। देखो यहाँ लिखा है, मान लीजिए अंक संदृष्टि में लोक का प्रमाण चार है, अतः शलाका राशि चार, विरलन राशि चार और देय राशि चार, इस प्रकार तीन जगह स्थापित किया, विरलन राशि का विरलन कर और उसके ऊपर देय राशि देकर परस्पर गुणा करने से, ये चार बार चार को लिखा ना 256, एक बार गुणकार हुआ, अतः शलाका राशि चार में से एक अंक घटा दिया, यहाँ पर लोक स्वरूप चार का गुणा तीन बार ही हुआ है, यानी हमने एक बार वो पूरी गुणित प्रक्रिया की, गुणन क्रिया एक बार की, परंतु उसमें गुणा कितनी बार करना पड़ा, माइनस एक बार, माइनस एक, यानी देय राशि माइनस एक इतनी बार किया, अर्थात चार गुणा चार 16 हुआ एक बार, और 16 गुना 4 किया 64 हुआ वो दूसरी बार, और 64 गुना 4 किया 256 हुआ ये तीसरी बार गुणकार हुआ, अतः गुणकार शलाकाएं एक कम लोक मात्र कही गई है, वो तो शला तब जाके शलाका राशि में से एक कम हुआ। हम तो केवल शलाका राशि को गिन रहे थे, वो तो हमने इतने बार गुणा किया, इतने बार गुणा किया, इतने बार इतना ही देखा, यानी ऐसे हमने एक बार किया, फिर और एक बार किया, और एक बार किया, और चार बार किया, ऐसे इतने ही हम देखते तब शलाका राशि समाप्त हुई, परंतु इसमें हमने तीन बार गुणा किया था, इसमें 255 बार गुणा किया था, ये ले हाँ उस वो पहली बार विरल राशि लोक थी, नेक्स्ट टाइम वो विरल राशि भी बड़ी होती है, हाँ उसमें एक कम, तो वो सारे उसको ऐड करते चले जाएंगे, वो अभी बताएंगे, ये पूरा ले लेंगे ना गुणकार शलाका क्या है, उसको दोबारा ले लेंगे आज 18 नंबर का, कल 19 नंबर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम स सदा देत हो।